नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज ही नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे 19 मई को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के रूप में ये उनकी पहली चीन यात्रा है।
व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने में भी रुचि दिखाई। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर लगाए उच्च शुल्कों को समाप्त कर दिया था, जबकि चीन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित न करने पर सहमत हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को बताया कि चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है, जो एक दशक में बोइंग की पहली बड़ी खरीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अमेरिका के न्याय विभाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दायर मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी अनुशासनात्मक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार कार्यालय के उस अधिकार को चुनौती देता है जो अमेरिका में अधिवक्ताओं के लिए नैतिकता और कदाचार के मामलों की जांच करता है। मुकदमे में मुख्य रूप से न्याय विभाग के पूर्व अधिवक्ता जेफ्री क्लार्क का नाम शामिल है, जिन पर वर्ष 2020 में चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। मुकदमे में ट्रंप के वफादार और वर्तमान में क्षमादान मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एड मार्टिन का भी नाम शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीसी के अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या संवैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन किया है या नहीं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के मद्देनजर क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने समकक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी चर्चा की। अमरीका ने क्यूबा को ईंधन संकट से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता की पेशकश को नवीनीकृत किया है। क्यूबा ने कहा है कि वे सहायता पर चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में घर, एक स्कूल, एक पशु अस्पताल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें आवासीय क्षेत्रों में गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस युद्ध समाप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। उधर रूस ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की सेना को समर्थन देने वाले सैन्य और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने वाशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता की। इसमें हिजबुल्ला को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई। वार्ता आज भी जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर और कड़े हमले करने का आदेश दिया। तब से इसराइल की सेना ने लेबनान से बार बार रॉकेट लॉन्च होने की खबर दी है और कहा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
नेपाल ने इस पर्वतरोहण सत्र में रिकॉर्ड 492 पर्वतरोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं। यह आंकड़ा 2023 में जारी किए गए 489 अनुमति पत्रों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगो को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जबकि सांडा एक आधुनिक बिना हथियार वाली स्पर्धा है। इसमें मुक्का मारना, लात मारना, फेंकना, कुश्ती और बचाव की तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।